हरे कृष्ण। तो हम विचार कर रहा था कल परसों से शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है। हाँ, शुद्ध भक्ति का लक्षण कैसा कैसा होता है। जमुनाप्रिय, यू हैव द बुक? ओके, सो टुडे वी विल गो इनटू द नेक्स्ट वन व्हिच इज शुभदा। Devotional service brings all auspiciousness. हम क्या विचार किया था कल? कौन सा? हाँ, क्लेश अग्नि, भौतिक क्लेश से राहत, भौतिक क्लेश से मुक्ति, भौतिक क्लेश का विनाश। सबसे पहले फिर हम विचार कर लेते हैं हमारा क्लेश यहाँ क्यों हो रहा है। अच्छा, पहले तो ये सवाल है कि क्लेश मिल रहा है या मजा मिल रहा है इस जगत में? हाँ, क्या मिल रहा है? हाँ, मजा मिल रहा है। जो सोचते हैं कि यहाँ बहुत मजा मिल रहा है, हाथ उठाइए। मजा मिल रहा है। ओके। ठीक है, मैं यहाँ के बात नहीं किया, मैं भौतिक जगत का बात किया था। हाँ, तो फिर से बताइए, भौतिक जगत में किसको मजा मिल रहा है? अच्छा, और तो भौतिक जगत में क्या मिलता है? भगवद गीता में उसका वर्णन हुआ है, भौतिक जगत कैसा है? हाँ, दुखालयम। दुख, दुख का मतलब क्या है? दुख का मतलब है कष्ट, तकलीफ, क्लेश। और आलयम, आलयम का मतलब क्या है? आलय, आलय का मतलब स्थान, रहने का जगह। तो ये भौतिक जगत दुख प्राप्ति के एक बहुत बढ़िया जगह है। जो लोग दुख चाहता है वो लोग भौतिक जगत में आकर बहुत मजा लूट सकते हैं। परंतु साधारणतया कोई भी दुख नहीं चाहता है। हम दुख नहीं चाहते हैं, परंतु हम इस दुख के आलय में, दुख के स्थान में हम रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं यह दुख नहीं मिल रहा है या सुख मिल रहा है। इसको माया कहा जाता है, इसका नाम है माया। माया का मतलब जो नहीं है। माया का और एक विचार होता है कि इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब जो नहीं है वैसा प्रतीति। माया का एक दृष्टांत ऐसे दिया जाता है, जहां जैसे जैसे मृगतृषा। मृगतृषा, मृगतृषा क्या है? किसको पता है मृगतृषा क्या है? अच्छा, तुम बताओ मृगतृषा क्या है? हाँ, अच्छा, रेगिस्तान में पानी नहीं है, परंतु ऐसे प्रतीत होता है कि वहां पानी है। तो ये मृगतृषा है। मृगतृषा क्या है? एक माया है। पानी नहीं है, हम पानी चाहते हैं, प्यासे हैं, परंतु असल में वो है रेगिस्तान के रेत, और रेत बहुत गर्म हो जाता है। तो असल में पानी नहीं है, वो असल से असल में है पानी का बिल्कुल विपरीत वस्तु, आग है। परंतु आग से पानी का जो प्रतीति होता है उसे माया कहा जाता है। ऐसे इस भौतिक जगत में जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है, परंतु हम सोचते हैं कि ये मिलेगा, है ना? तो हम चाहते हैं पर नहीं मिल रहा है तो उससे कष्ट होगा। हम भूखा हैं, हम खाना चाहते हैं, खाना नहीं मिल रहा है। हम प्यासी हैं, हम पानी चाहते हैं प्यास बुझाने के लिए, परंतु पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या हमें क्या होगा? जो हम चाहते हैं अगर नहीं मिलता तो क्या होता है? कष्ट होता है। तो ये कष्ट क्यों हो रहा है? जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है। तो अब विचार करना है हमारा असल चाहना क्या है, हम क्या चाहते हैं। कोई विचार किए हैं आप क्या चाहते हैं? यस पारुल, तुम क्या चाहती हो? आनंद चाहती हो? अच्छा, बहुत अच्छा। तो मिल रहा है यहाँ? यहाँ नहीं, टेम्पल में मिल रहा है, ठीक है, परंतु भौतिक जगत में? अच्छा, तो भौतिक जगत के विचार से हम देखते हैं कि जो हम आनंद चाहते हैं, आनंद नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? पारुल तुम बताओ, आनंद चाहती हो पर मिल नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? तुमको आनंद कैसे होगा? किससे आनंद होगा? किससे आनंद मिलेगा? तुम तो सीधा आंसर दे दिया है। बहुत अच्छा। आनंद के लिए हम तीन वस्तु हम चाहते हैं। जिससे कष्ट होता है वो हम नहीं चाहते हैं। किससे कष्ट होता है? मृत्यु से कष्ट होता है ना? मृत्यु का भय, सारे जो कष्ट हैं वो मृत्यु का भय से उसका उत्पत्ति होता है। तो अगर हम मृत्यु नहीं होगा तो कष्ट रहेगा? अगर मृत्यु नहीं रहेगा तो कष्ट नहीं रहेगा। हम ज्ञान, हम सब कुछ जानना चाहते हैं पर हम सब जान सकते हैं नहीं, उसलिए भी हमें आनंद नहीं मिल रहा है। तो ये जो हम चाहते हैं वो हमें जब नहीं मिलता है तब हमें कष्ट होता है, परंतु जो हम चाहते हैं वो अगर मिल जाता है तो क्या होगा? जो अगर चाहते हैं वो मिल जाएगा तो आनंद प्राप्ति होगा। तो अब विचार है कि हम असल में हमें क्या हम जो चाहते हैं वो कैसे उसका प्राप्ति हो सकता है। इसका सही विचार ये है कि हमारा जो चाहना है वो भौतिक नहीं है, हमारा सारे चाहना आत्मिक है या आध्यात्मिक है। हमारे सारे कुछ चाहना आत्मा को चाहना है, शरीर का चाहना नहीं। परंतु जब हम हमारे शरीर को आत्मा समझ लेते हैं तो शरीर का जो चाहना है उसके द्वारा हम हमारा आत्मा का तृप्ति साधन करने का कोशिश करते हैं, पर कभी नहीं संभव होता है। ये विचार सरल विचार है। इसका भी एक दृष्टांत ऐसे हम दे सकते हैं। मछली का चाहना क्या है? मछली क्या चाहता है? पानी, क्योंकि मछली पानी में रहता है। अगर मछली को पानी से निकालकर हम जमीन पर रखते हैं तो मछली का क्या क्या होगा? वो जो चाहता है असल चाहना, उसको जो चाहता है वो उसको नहीं मिलेगा। तो मछली का जो ये चाहना है, ये मछली का चाहना है पानी। वैसे ही हम आत्मा हैं, आत्मा का चाहना क्या है? आत्मा का चाहना आत्मिक वस्तु है। तो भौतिक जगत में आत्मिक वस्तु मिलता है? नहीं मिलता है। इसलिए भौतिक जगत में आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। भौतिक जगत में आत्मा हर समय कष्ट में भोगते रहते हैं। तो पानी, मछली को अगर जमीन से हम फिर पानी में ले जाते हैं तो क्या होता है? मछली का हाल कैसा होता है? मछली का तब और कुछ जरूरत होता है? पानी, जमीन का जो चार सारे वस्तु हैं उस वस्तु का मछली का कोई जरूरत रहता है तब? नहीं। वैसे ही हमारा भी, हम लोगों को भी, चूंकि हम आत्मा हैं, हमारा चाहना भी आत्मिक है, और जब हम उस आत्मिक स्थिति में चले जाते हैं तो इस भौतिक जगत का कुछ भी चाहना हमें नहीं रहता है। तो क्लेश से मुक्ति का कारण क्या होता है कि भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक स्थिति में जब चले जाते हैं तो क्लेश का निवृत्ति हो जाता है। ठीक है, सब समझ गए हैं, सब मान लिए हैं, सब जान लिए हैं। पहले तो जानना है, उसके बाद मानना है। जान लिया, मान भी लिया है, तो अब क्या करना है, अब इसको प्रयोग करना है अपना जीवन में। इस स्थिति का और इस विचार का प्रयोग करना चाहिए। तो आज हम कृष्ण भावनामृत सर्व मंगलकारी हैं ये लक्षण का विचार करेंगे। कृष्ण भक्ति जब से हम ग्रहण करते हैं सबसे पहले क्या होता है, सारे क्लेश का, क्लेश से राहत होता है। और सारे कृष्ण भक्ति ग्रहण करने से सर्व मंगल प्राप्ति होता है। वो कैसे होता है, श्रील रूप गोस्वामी ने शुभ दत्त की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। असल शुभ क्या है, सारे विश्व के लिए, जो सारे विश्व के सारे लोगों के लिए, सारे जीवों के लिए जो कल्याण कार्य है वो है शुभ। इस समय लोगों के समूह, समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्य में लगे हुए हैं। यहां तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यावहारिक रूप में संभव नहीं है। असल बात यह है कि जिसको पता नहीं है वो कल्याण कैसे होता है, वो कैसे कल्याण साधन करेंगे। जिसको खुद नहीं पता है कैसे सारे आदमी का मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, वो जिसको पता नहीं हो वो किसको, दूसरे को राह दिखाएंगे या इस जगत में कल्याण का स्थापना करेंगे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या बहुत सारे संस्था हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये बहुत सारे चाहते हैं कि सारे दुनिया के लोगों के लिए कल्याण करेंगे। वो क्या करता है, जैसे कहीं अर्थक्वेक को भूकंप कहते हैं, जैसे यहाँ हुआ था गुजरात में भूकंप हुआ है, तो उन लोगों ने क्या किया, कोई 2-3 जहाज से सारे माल भेजा है, तो माल तो ये भूकंप के जो पहले बात तो ये है कि जो जिसका भूकंप में घर तोड़ टूट गए हैं, अपने रिश्तेदार का मृत्यु हो गए हैं, वो खुद जख्म हो चुके हैं, उसे थोड़ा सा रुपया और थोड़ा कपड़ा मिलने से उसका क्या, उसका समाधान होगा, नहीं होगा। असल में ये सारे समस्याएं का समाधान कैसे हो सकता है, बहुत सरल रूप से ये सारे समस्याएं का समाधान ऐसे हो सकता है कि जब हमें पता चलता है कि जब तक ये शरीर रहेगा तब ये शरीर से हमें कष्ट भोगना होगा, जब तक शरीर है शरीर का मृत्यु होगा, तो रिश्तेदार का अगर मृत्यु हुआ उससे रोकना हम कैसे रोक सकेंगे, मृत्यु को तो कभी ना कभी होगा और मेरा भी मृत्यु होगा। और जख्म, ये परेशानी, ये भौतिक जगत में होता रहता है, परंतु जब हमें ये विचार, हमें ये पूर्णतया पूर्ण रूप से जब हमें मालूम हो जाता है कि ये शरीर का धर्म ये है, परंतु मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तब बताइए मेरा ये जख्म मेरा जख्म होगा, ये मेरा मृत्यु मेरा होगा, मेरा रिश्तेदार का मृत्यु होगा? नहीं। ये साधारण बहुत सरल भाव से इस भावना को हम समझ लेते हैं तो सारे समस्याएं का समाधान होकर पूर्ण कल्याण का प्राप्ति होता है। तो आप बताइए सबसे बढ़िया कल्याण साधन, सबसे बढ़िया कल्याण साधन कैसे संभव हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है? सबको अगर हम इस ज्ञान प्रदान कर सकते हैं तो उनके सारे समस्याएं का समाधान हो। तो आप देखिए ये जो कर रहे हैं सारे बड़े बड़े संस्थान हैं, वो हजारों करोड़ों, हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों रुपए वो खर्च कर रहा है। पर आप और इसके अलावा ये भी विचार एक करना है, बहुत सारे रुपया भेजा, बहुत सारे सामान भेजा, परंतु सामान क्या जो भूकंप में जो इसका हानि हुआ है उसके पास पहुंचा, उसके पास पहुंचने के पहले चोरी हो गए हैं। तो देखिए ये समस्या का समाधान ये लोग कैसे साधन करेंगे। और हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि आपका जो जो कठिनाई है, आपका जो तकलीफ है, वो तकलीफ से छुटकारा तभी मिलेगा जब तक आप अपना आपका अपना आध्यात्मिक स्वरूप को पहचान लेते हैं और परमेश्वर भगवान के साथ आपका संपर्क जोड़ लेते हैं। सारे दुनिया को कौन संभाल रहे हैं? भगवान संभाल रहे हैं। हमारा जो कुछ सारे चीजें का जरूरत है वो कहां से मिल रहा है? हमारा खाना कौन सप्लाई कर रहे हैं? हम जो खाना खाते हैं वो क्या यूनेस्को सप्लाई कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन सप्लाई कर रहे हैं, ना क्या अमेरिकन गवर्नमेंट सप्लाई कर रहा है, ना क्या रशियन गवर्नमेंट सप्लाई कर रहे हैं, ना क्या भारतीय का सरकार सप्लाई कर रहे हैं? कोई भी वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमारा जो पानी का जरूरत है वो कौन सप्लाई कर रहा है? हम जो श्वास लेते हैं ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है? सब भगवान सप्लाई कर रहे हैं। तो भगवान तो हमारा देखभाल कर ही रहे हैं। तो हम अगर भगवान को शरण ले लेते हैं तो तब क्या हमें कोई कठिनाई, कोई असुविधा या कोई हानि हो सकता है? नहीं। तो आप बताइए जब हम भगवान को शरण लेते हैं तो क्या होता है? सर्व मंगल, सारे कल्याण साधन हो जाता है। इसलिए कृष्ण भक्ति शुभदा है, शुभदायक, शुभ अर्थात कल्याण या मंगल प्रदान करते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मतलब ये कृष्ण भक्ति का जो आंदोलन, कृष्ण भक्ति का ये आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत में आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामय भक्ति में तत्पर है वो सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वो वृक्ष तथा पशुओं तक की प्रसन्न करता है क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस कृष्ण भक्ति का प्रचार होने से केवल मानव समाज का ही कल्याण नहीं होता है, पशु समाज का या वृक्ष समाज का भी कल्याण साधन होता है। इसका जीता जगता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया। जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे तब बाघ, हाथी, हिरण तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी अपनी विधि से नाच नाच कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके उसके भाग ले रहे थे। यहां से तो काफी दूर नहीं है झारखंड। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे, पहले महाप्रभु उत्तर भारत से जाने का प्रबंध किया था, बंगाल से बिहार होके उत्तर प्रदेश होके वृंदावन जाने का प्रबंध किया था। पर जब वहां जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु ने, तो इतने सारे आदमी उनका पीछे करना शुरू किया, तो महाप्रभु सोचा कि वृंदावन ऐसे नहीं जाना चाहिए। भगवान को भक्ति करने के लिए, भगवान को याद करने के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए मैं वृंदावन जा रहा हूँ, और इतने सारे आदमी अगर हमारे साथ चलेगा तो ये मेरा भक्ति भाव कैसे आएगा। ये सोचकर चैतन्य महाप्रभु ने बिहार से लौट आए मनवद्वीप, कानाई नाथशाला कहकर एक जगह है गंगा के तट पर, वहां तक जाकर उन्होंने वापस चले आए। और उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से, नवद्वीप ने जगन्नाथपुरी आ गए थे, जगन्नाथपुरी से फिर यात्रा किया, उड़ीसा से यात्रा किया। तब इस बार महाप्रभु उत्तर भारत से नहीं गया, महाप्रभु ने उड़ीसा से झारखंड के जंगल के जंगल होकर महाप्रभु वृंदावन चले थे। साथ में केवल एक साथी थे उनका, सेवक। जब महाप्रभु चल रहे थे वन झारखंड के जंगल में, तो महाप्रभु ने कीर्तन कर रहे थे, और उस समय सारे जानवर, जंगल के जानवर भी महाप्रभु के साथ कीर्तन करना शुरू किया और नाचना शुरू किया। देखिए हाथी, बाघ, शेर, सांप, भल्लू, ये सब नाचने लगा, हिरन नाचने लगा और बोलने भी लगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसा था श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव। कोई पूछ सकता है ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है? महाप्रभु का प्रभाव से उस जानवर को भी आत्मिक स्थिति का अनुभव हो चुका था। जानवर को आत्मिक स्थिति क्यों नहीं होता है? क्योंकि जानवर का जो माइक का जो भौतिक आवरण जो है वो बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होने के कारण उसका चेतना आत्मा तक नहीं पहुंच सकता है। परंतु महाप्रभु के भक्ति के प्रभाव से, महाप्रभु के प्रभाव से, महाप्रभु के प्रेम के प्रभाव से जानवर को भी कृष्ण भक्ति प्राप्ति हो चुका था। तो आप बताइए, कृष्ण भक्ति का प्रचार होने से अगर जानवर को भी कल्याण होता है तो मनुष्य का कल्याण होगा या नहीं? और सबसे बड़ी बात तो ये है, आप में से कौन कौन कृष्ण भक्ति का मार्ग ग्रहण किए हैं, हाथ उठाइए। ये कृष्ण भक्ति का मार्ग ग्रहण करने से आपका कल्याण हुआ है या अकल्याण हुआ है? जिसको कल्याण हुआ है दो हाथ उठाइए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट, इसका व्यावहारिक फल, सुफल। भक्ति का, भक्ति अवलंबन करने से, भक्ति का मार्ग ग्रहण करने से क्या मंगल होता है, क्या लाभ होता है, इसका अनुभव ऐसे ही हम कर सकते हैं। जैसे जब किसी को भूख लगता है और खाना खाता है तो उसका कैसा होता है? खाना खाने के बाद वो तृप्त हो जाता है, भूख नहीं रहता है। तो जब भूखा आदमी जब खाना खा लेता है तब के दूसरे आदमी को जाकर उसको बताना पड़ता है कि देखो भाई चूंकि तुम खाना खाए हो तो इसलिए तुम्हारा तृप्ति हुआ है। अब बताना पड़ता है या उसको खुद पता चल जाता है कि उसको खाना खाने से क्या होता है, क्या हुआ है। तो ऐसे ही भक्ति ग्रहण करने से, इस भक्ति का मार्ग ग्रहण करने से क्या फायदा होता है, जो ग्रहण कर चुके हैं उसको ही भली भांति पता चल जाता है, पता लगता है। अच्छा so you want to the go to the last, I am going to read first second the fifth from the last chapter of this one. Hari Bhakti Sudhodaya mein kaha gaya hai, did you find it? Hari Bhakti Sudhodaya, huh? Page number will not tally. This chapter coming to the end, you get the end of, go to the end of this chapter, huh? And the fifth from the last. Did you find the end of this chapter? End of this chapter means this Shubhada chapter. Just go 2-3 pages after that. Yeah, 3 pages after that. On the go to the third or fourth page of the beginning of this chapter. I mean this Sudur Subhada. You get it? Huh? Finally. Huh? Yeah. Right. Did you go to the end of it? The fifth from the last. Got it. What does it read? No. In Hari Bhakti Sudhodaya, Prahlad Maharaj prayed to Nrisimhadev. Tomorrow you get another English book. Then I can see it. Did you find it? Hari Bhakti Sudhodaya में कहा गया है कि महान भगवत भक्त प्रह्लाद महाराज ने नृसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी ये बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ हो, दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी ये प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और स्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। हाँ, सो कृष्ण मतलब कृष्ण भक्ति प्राप्ति होने से सब कुछ प्राप्ति हो जाता है, योग का सिद्धि प्राप्ति हो जाता है, भौतिक जगत का भोग प्राप्ति हो सकता है और इस भौतिक जगत का बंधन से मुक्ति हो जाता है। तो अगर ये कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ मिल जाता है तो दूसरा और कुछ करने का जरूरत होता है नहीं। वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख का सागर से बढ़कर है। अन्य किसी तरीका से, उपाय से जो सुख प्राप्ति है, सुख का प्राप्ति का कैसे और अन्य तरीका कैसा है? भौतिक जगत को भोग, जिसे भुक्ति कहा जाता है, भौतिक जगत से छुटकारा, जिसे मुक्ति कहा जाता है, और योग का सिद्धि। तो ये जो जितने सारे तरीका हैं, इस त, तरीका से प्राप्त हुआ जो सुख का सागर है, उस सागर भी कृष्ण भावना का एक बूंद सुख का भी समान नहीं होता है। तो आप बताइए, और कुछ करने का जरूरत है ना, क्या कृष्ण भक्ति का ही मार्ग अवलंबन करना है? ठीक है, तो करते रहेंगे ना, जरूर। हाँ बस, हाँ और कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और कुछ करने का जरूरत नहीं है, केवल मेरा शरण ले लो, उसका मतलब मेरा भक्त बन जाओ। अगर तुम मेरा भक्त बन जाओगे बस, और कुछ करने का जरूरत नहीं होगा। तो कोई बोल सकता है ये कैसे संभव, मैं बोलूंगा आप करके देखिए संभव होता है या नहीं। थोड़ा सा कोशिश करके देखिए क्या होता है। इस कारण जो इस मार्ग को एक बार ग्रहण कर लेता है वो इस मार्ग को कभी त्याग नहीं कर सकता है, अगर चाहता भी तो भी के त्याग नहीं कर सकता है। ऐसे कभी कभी होता है, कोई भक्त है ऐसे कुछ कुछ असुविधा के कारण उन्होंने मंदिर से छोड़कर चले गए थे, और उस समय उन्होंने सोचा था कि ऐसे होता ना, कोई वापस में झगड़ा हुआ है बस वो मंदिर छोड़कर चले गए। मंदिर छोड़कर चले गए परंतु कुछ दिन बाद वो वापस आ जाता है। जब पूछता है क्या हुआ, क्यों वापस आ गया, बोले बाहर अच्छा नहीं लगता है। भक्ति का स्वाद एक बार मिलने से बस और इसको त्यागना संभव नहीं होता है। इसका एक दृष्टांत ऐसे दिया जाता है, कृष्ण कृष्ण नाम का जो री है उसको क्या बोलते हैं, हुक, मछली पकड़ने का जो ये होता है क्या बोलते हैं उसके, कांटा, कांटा। वो जो री जो है वो एक कांटा जैसा है, तो मछली जब उसको पकड़ लेता है उसको छोड़ सकता है नहीं। तो ये कृष्ण भक्ति जो एक बार ग्रहण कर लिया है वो बस कांटा खा लिया है, बस उसको और कांटा में फंस गया है, उसको इस मार्ग और छोड़ना संभव नहीं होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त, अच्छा ये ठीक है, इस नेक्स्ट पैराग्राफ आई एम जस्ट गोइंग। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त जिसका नाम खोला वैचा श्रीधर था, अत्यंत निर्धन था, उसका बहुत छोटा सा व्यापार था। वो एक केले के वृक्ष का पत्तों के दोने बनाकर बेचता था। उसकी आय लगभग शून्य थी, किंतु तो भी वो अपनी इस तुच्छ आय का 50% गंगा की पूजा करने में व्यय करता था और शेष 50% से किसी तरह अपनी जीविका चलाता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने इस विश्वास पात्र भक्त खोला बेचा श्रीधर के समक्ष प्रकट हुए और उससे इच्छानुसार कोई भी ऐश्वर्य मांगने को कहा, किंतु श्रीधर ने कहा कि उसे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वो अपनी वर्तमान अवस्था में ही सुखी था और महाप्रभु श्री चैतन्य के चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति का कामना करता था। शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है, यदि वो 2400 घंटे भक्ति में लगे रह सके तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि मोक्ष या ब्रह्म के साथ तदात्मा तथा सुख भी नहीं। नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है वो धर्म अर्थ काम तथा 5 प्रकार के मोक्ष के प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख के संग रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। इस प्रकार के प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखलाता। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती हैं, ठीक इसी तरह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करते हैं। हाँ, जैसे दासियां रानी का अनुसरण करती हैं करते हैं, वैसे ही ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष से प्राप्त जो सुख हैं वो सारे कृष्ण भक्ति का अनुसरण करते हैं। अर्थात जो भक्ति के मार्ग ग्रहण करने से ये सारे सुख तत्क्षण ही प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्तों को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता। वो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, किंतु यदि कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है तो भगवान भक्तों के मांगे बिना उसे पूरी कर देते हैं। भक्त का मन में अगर कोई अभिलाषा रह गया, अगर भक्त नहीं भी चाहता, मन में थोड़ा सा बहुत गहरा कोई स्थान में कुछ भी कोई अभिलाषा अगर रह जाता है तो उसको भी भगवान पूर्ण कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज का पिता उत्तनपाद का दो पत्नी थे, एक सुनीति एंड सुरुचि, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का माता ध्रुव महाराज का माता सुनीति का उतना राजा से उतना राजा को उतना उसके प्रति प्यार नहीं था जितना सुरुचि के प्रति था। सुरुचि को ही राजा बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन बच्चा सा ध्रुव महाराज ने आकर अपना पिता का गोद में बैठने का प्रयास किया तो सुरुचि ने उसको हटा दिया, बोला अगर तुम वहाँ बैठना चाहते हो तो मेरा गर्भ में तुम्हारा जन्म होने के बाद ही तुमको सौभाग्य मिलेगा, नहीं तो नहीं। और तब ध्रुव का बहुत गुस्सा आया, माँ के पास जाकर बताया कि मेरा पिता का गोद में बैठने का अवसर मौका हमें नहीं दिया, हमको भरा हटा दिया वहाँ से। तो माँ बताया ठीक है तुम मन में अगर तुम्हारा कोई कष्ट है तो जाके भगवान को हरि को बताओ, हरि तुम्हारे सारे कष्ट को दूर कर देंगे और तुम्हारे जितने सारे अभिलाषा हैं वो पूरा कर देंगे। तब ध्रुव महाराज ने अपना माँ को पूछा हरि कहाँ है, तो माँ बताया हरि जब कोई आदमी कोई व्यक्ति अगर हरि को ढूंढना चाहते हैं तो जंगल में जाते हैं, जंगल में हरि को ढूंढने को जाते हैं। 5 साल का लड़का ध्रुव घर छोड़कर जंगल में चले गए और वहां हरि को ढूंढने लगा। तब यद्यपि जंगल में कितने सारे जानवर थे पर चूंकि वो भगवान को भावना में मगन थे कोई भी उसका कोई हानि नहीं पहुंचाया। तब नारद मुनि ने आकर ध्रुव महाराज को निर्देश दिया कैसे भगवान को ध्यान करना चाहिए, मंत्र दिया और भगवान को ध्यान करने का तरीका बतलाया। तो ध्रुव महाराज ने बहुत कठोर तपस्या करके भगवान को ध्यान करना शुरू किया। तब अंत में भगवान आया, 5 साल का लड़का भगवान को दर्शन प्राप्त होकर उसका मन में इतना आनंद आया, भगवान को दर्शन से ही इतना आनंद प्राप्ति होता है। जब भगवान जब ध्रुव महाराज को बताया, तुम बताओ क्या चाहते हो, ध्रुव महाराज बोला मैं कुछ नहीं चाहता, आपका दर्शन मिलने के बाद और क्या चाहना है, मैं तो कांच ढूंढ रहा था, कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था और हम हीरा का में हीरा मिल गए हैं, तो हमको कांच लेके हमें क्या फायदा है। परंतु भगवान बताए जब क्योंकि तुम ये वासना किया था कि तुम्हारा दादा से भी मतलब ब्रह्मा से भी बढ़कर एक राज हो तुम्हारा, तो वैसे स्थान तुमको मैं दूंगा, ब्रह्मलोक सत्यलोक से भी पड़े भगवान का धाम जिसे ध्रुवलोक कहा जाता है उसका प्राप्ति भगवान की कृपा से उनको हुआ था। तो ऐसे ध्रुव महाराज देखिए, यद्यपि पहले थोड़ा सा चाहना था, वो अभिमान के मारे गुस्सा के मारे कुछ ऐसे अभिमान किया था, कुछ चाह था, अभिलाष किया था, परंतु भगवान को दर्शन मिलने के बाद और कुछ अभिलाषा नहीं रहेगा। यद्यपि उसका अभिलाषा नहीं रह गया, पर भगवान उसको मनवांछा मन की अभिलाषा पूर्ण किया था। ऐसे भक्तों के मन में कोई थोड़ा सा अभिलाषा अगर रह जाता तो भगवान पूर्ण कर देते हैं, जिससे उसका भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का सुगम हो जाता है रास्ता। जिससे भक्ति का हानि होता है भगवान वो नहीं देते। भक्ति का भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का संभावना बढ़ाने के लिए, भक्ति मार्ग को सुगम करने के लिए भगवान भक्तों का अभिलाषा पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? তপস্যা কঠোর তপস্যা করেছিল, সময়ের বিচার হয়নি, বেশি দিন লাগেনি। ওকে, হরে কৃষ্ণ। वो लोग कैसे जा सकते हैं, वो उसका उनका विचार है। तुम्हारा विचार होना चाहिए कि तुम कभी भक्ति मार्ग को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। जो गए हैं वो क्या भला काम किया है, अच्छा किया है, अच्छा हुआ है उससे? नहीं। तो जो काम अच्छा नहीं है उसको करना चाहिए, तो उससे तुम्हें शिक्षा मिलना चाहिए कि इतने बड़े बड़े भक्त भी अगर भक्ति मार्ग को छोड़कर चले जाते हैं तो भक्ति मार्ग में रहना कितना कठिन है। तो हर समय प्रार्थना करना चाहिए कि मैं भगवान कृपा करके हमको भक्ति मार्ग से कभी नहीं जाने का मौका दीजिए, हमको ऐसे यहाँ ही रहने का अवसर दीजिए, इससे इस मार्ग को छोड़कर हम कभी भी कहीं नहीं जाना चाहता, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। आरती शुरू हो गए हैं।